इस प्रोग्राम के अखराजात जॉयसमर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं।
आज शाम में जिंदगी के हर मौसम को गले लगाने पर सिखाऊंगी आपकी जिंदगी का हर मौसम। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से प्यार करना चाहती हूँ। आप सिर्फ उसके हिस्सों से प्यार नहीं कर सकते, जब तक मैं जिंदा हूँ उससे प्यार करना चाहती हूँ। मैं हर दिन से प्यार करना चाहती हूँ। आप जिंदगी के बजाय सिर्फ उसके हिस्सों से प्यार नहीं कर सकते, आप सीखें कि इसे मुकम्मल तौर पर कैसे मोहब्बत करें। और एक ही तरीका है इन बातों को गले लगाने का, जो दर्द भरी या तल और नाइंसाफ है या जिन्हें हम पसंद नहीं करते, कि अगर हम कुछ भेदों को जान लें जिनके बारे में पौलुस रसूल ने बात की। उसने कहा, मैंने भेद को जाना, मैंने जाना, ये जानने का अमल है। मैंने खुश रहने के भेद को जाना है, और खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी बदलाव को नहीं चाहते। यकीनन हम सब की जिंदगी में ऐसी बातें हैं जो हमें पसंद नहीं, जो बेइंसाफ हैं, और हम उनमें बदलाव देखना चाहते हैं। लेकिन हम इसके बावजूद खुश रह सकते और खुशी मना सकते हैं जब तक खुदा उन हालात पर काम कर रहा है। और मैं कुछ कहूंगी, अगर हम वाकई खुदा पर भरोसा रखते हैं, मतलब अगर वाकई भरोसा रखते हैं, तो हम ऐसा करने के काबिल हैं। सो हमें सीखना है किस तरह ना सिर्फ अच्छी बातों को गले से लगाना है, बल्कि दर्द भरी बातों को जो गैर मुनसिफाना है। और मैं आज शाम आपको कुछ भेद की बातें बताऊंगी कि आप ये कैसे करें। कुछ बातें आप जानेंगे जो मैं आपको सिर्फ याद दिलाऊंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये अल्फाज के मुझे नफरत है अपनी बातचीत से निकाल दें। मुझे रश में गाड़ी चलाने से नफरत है, मुझे कपड़े धोने से नफरत है, मुझे घास काटने से नफरत है, मुझे सफाई करने से नफरत है, मुझे अपनी नौकरी से और अपने आप से नफरत है। हम इस जिंदगी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिससे हम प्यार कर सकें, अगर हम हर चीज से नफरत करते हैं। ये बहुत बुरा लफ्ज है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चीजों से नफरत नहीं करना चाहती। सो बहुत माह पहले मैंने एक आदत बनाना शुरू की, ये कहने की कि कभी कभार मैं दिन में एक से ज्यादा दफा भी कहती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, मुझे खुदा से मोहब्बत है, मुझे खुद से मोहब्बत है, मुझे अपने घराने से मोहब्बत है, जो काम मैं मिनिस्ट्री में करती हूँ उससे मोहब्बत है, मुझे जिंदगी से मोहब्बत है। सो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि मेरी इस बात को लें और करना शुरू करें। पैदाइश 8:22, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं बोने से ज्यादा काटने को तरजीह दूंगी, क्योंकि बोने के वक्त आप कुछ देते हैं और काटने के वक्त आप कुछ हासिल करते हैं, इसीलिए मुझे काटना पसंद है। ठंडक और हरारत, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैं हरारत को ठंडक पर तरजीह देती हूं। जाड़ा और गर्मी, मेरे नजदीक गर्मी सर्दी से बेहतर है, और दिन और रात, और यकीनन मेरे लिए दिन रात से बेहतर है। सो ये मेरी तरजीहात हैं, लेकिन मैं एक को दूसरे के बिना नहीं पाती। और ऐसे या वैसे खुदा के फजल से मैं उम्मीद रखती हूं कि खुदा मुझे आज रात ये वाजे करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि खुश और मुतमइन रहने की वाहिद सूरत यह है कि सब कुछ अच्छा और आपकी मर्जी के मुताबिक हो, तो दर हकीकत आप एक नाहमवार सफर के अंदर हैं। मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक ऐसी कोशिश की है। आप सब जानते हैं मुझे आपके सामने कलाम सिखाते हुए 41 साल हो चुकी है, और मैं किसी किताब से बातें निकालकर आपके सामने नहीं ला रही, मतलब मैं इन बातों को जी चुकी हूं। और मैंने बड़े मसले खड़े किए और उदास रहने लगी, और मतलब तकरीबन हर तरह के मसाइल जिनसे आप आज शाम दो चार हैं मेरे सामने रहे, और मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा नहीं रही। मेरे डैड ने मेरे साथ ज्यादती की, माँ ने छोड़ दिया, जिंदगी में जो पहला मर्द आया उससे शादी कर ली, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। सो मैं जानती हूँ कि ऐसी जिंदगी गुजारना कैसा होता जो बर्बाद हो चुकी हो। मुझे पता है कि खुदा का कलाम काम करता है अगर इस पर अमल करें, लेकिन ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि हम समझें कि सिर्फ कलाम को सुनना हमारी जिंदगी को नहीं बदलता, इसको काम में लाना हमारी जिंदगी बदलता है। आपको बाइबल का बहुत सारा हिस्सा याद भी हो सकता है, मगर वो अपने आप आपकी जिंदगी को नहीं बदलेगा अगर आप वो करने को तैयार नहीं जो आप सुनते हैं। आमीन। मेरा ख्याल है अब कुछ करने पर ध्यान दिया जाए। मुझे अपनी जिंदगी में तवाजुन चाहिए था और आखिरकार मैंने पा लिया। डेव ने मुझसे कहा, मतलब शुरू में जब हमारी शादी हुई तो जज्बाती तौर पर मैं बहुत ज्यादा डावाडोल थी और हर वक्त बस ज्यादातर बुरा मूड होता था, और उस वक्त मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन सालों बाद जब मैं बेहतर हो गई, उन्होंने कहा, जानती हो मैं काम से वापस घर आते हुए सोचता था न जाने आज रात उसका मिजाज कैसा होगा, और पता ही अच्छा नहीं कि किसी को ऐसे जीना पड़े। और सिर्फ आज शाम आपकी परवाह करते हुए ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई बहुत मुतवाजन शख्सियत नहीं है, अगर आप डावाडोल किस्म के हैं और आपके हालात अच्छे हैं तो आप ठीक हैं, और जब वो अच्छे नहीं तो आप गिरे पड़े हैं, तो आज रात आप वक्त निकाल कर एक फैसला क्यों नहीं करते कि वाकई आप अपनी जिंदगी के उन मामलात में खुदा को मदाखलत करने दें और वाकई उसे अपनी मदद करने और सिखाने देंगे कि कैसे आप उस जिंदगी से मोहब्बत कर सकते हैं जो आपके पास है। आप जानते हैं ख्वाहिश करना बेकार है, ये लफ्ज बाइबल में नहीं है। ख्वाहिश करने पर कोई बाप नहीं, ख्वाहिश करने पर कोई हवाला नहीं है। पता है सुस्त लोग ख्वाहिश करते हैं जबकि बा मकसद लोग काम पर निकलते और पूरा करके लौटते हैं। हाँ, मैं आरजू करती हूं कि 20 पाउंड वजन घटा पाऊं, काश मैं कर से आजाद होती। काश मेरा घर साफ होता। काश तुम जैसी जिंदगी मेरी होती। काश मेरे पास जॉइस जैसी मिनिस्ट्री होती। मुझे यूं ख्वाहिश करना समझ नहीं आता, मैं आपको बता सकती हूं। आमीन। हमेशा से इंतजार करने का एक मौसम और फसल काटने का एक मौसम है, आजमाइश का मौसम है और बहाली का मौसम है। आप में से कितने एक जबरदस्त गवाही सुनना पसंद करते हैं? आपको पता है आज दोपहर के खाने पर हमने पास्टर और उनकी बीवी के साथ खाना खाया और चंद मिनिस्ट्री के और लोग थे जो शहर में हैं, और हुआ ये कि वो एक तरह से गवाही का वक्त हो गया और मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे, मतलब उन चंद जबरदस्त चीजों के बारे में जो उनकी जिंदगी में हुई। लेकिन बात क्या है, हर एक जबरदस्त बहाली एक बेहद मुश्किल वक्त के बाद आई जो कि तकलीफ दे था। अब याद रखें, आजमाइश से गुजरे बिना गवाही नहीं बन सकती। जिस बात के लिए हमें मोहतात रहना है वो ये कि कहीं आजमाइश के बाद हमारे पास गवाही के बजाय कुड़ने की बातें ही हूं। क्या ये मजाया नहीं? मेरा ख्याल मजाया है। गजलुल गजलात 2, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया और मीं बरस चुका और निकल गया, कोई हालेलुया कहेगा? जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। आप सब बताइए कि आपकी जिंदगी में इस वक्त जाड़े का मौसम है? जानते हैं हालात तारीख और सर्द हैं, कोई तरक्की नहीं, बहुत सी जरूरतें हैं, वही पुरानी बातें। क्या मैं आपको कुछ बताऊं, बाहर आपके दरवाजे पर खड़ी है। मैं आपको बताती हूं, कभी भी शैतान को अपनी उम्मीद चुराने ना दें, मतलब उम्मीद सबसे ताकतवर तहरीक दहिंदा है। जब आप मुसलसल उम्मीद रखते हैं तो शैतान आपको शिकस्त नहीं दे सकता। और लफ्ज उम्मीद का सादा सा मतलब ये तवक्कु रखना है कि किसी भी लम्हे भला होने वाला है। मैं तवक्कु रखती हूं कि किसी भी लम्हे कुछ अच्छा होने वाला है। आप कहें कि आज मैं बीमार हूं, कल अच्छा होने की तवक्कु रखती हूं, और अगर आप कल अच्छे ना हुए तो उससे अगले दिन अच्छा होने की उम्मीद रखें। आपका ये अच्छा, तुम्हारे लिए तो कहना आसान है, तुम्हें कुछ बुरा महसूस नहीं हुआ? जी आप नहीं जानते मुझे कैसा महसूस हुआ। मैं आपको अपने अब तक के साल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले 31 अक्टूबर मेरे दूसरे कूल्हे की तब्दीली हुई, इस वाले की 2 साल पहले हुई थी, सो अब मेरे पास 2 बायोनिक कूल्हे हैं। और मेरा मतलब ये कमाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी सेहत याबी जेरे अमल है। आपको इससे गुजरना पड़ता है, आपको हर तरह का इलाज फराहम किया जाता है, आपको दर्द होता है, आपको कड़वापन होता है, सूजन हो जाती है। सो मैं सेहत याबी के 6ठे हफ्ते में हूँ और चीजें अब बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं। और 24 दिसंबर मेरे सामने सर्दी और खराब गले की शिकायत आई, जो कि मुझे पूरे 7 हफ्ते तक रही। इसी दौरान मुझे थाईलैंड जाना पड़ा, सो मैंने 39 घंटे जहाज पर गुजारे। दरअसल मुझे लगा कि मैं ठीक हो रही हूं, फिर मैं घर गई और फिर मेरे साथ वही हुआ। मेरा जिस्म सर्जरी से पहले कमजोर था, सो जब उसका हमला हुआ तो इस वजह से उसका सामना मुश्किल हो गया। फिर मेरी सेहत जरा बेहतर होना शुरू हो गई, तब मैंने बैरूने मुल्क का चक्कर लगाया और उसने मुझे फिर से कमजोर कर दिया। और बस यही चलता रहा। लेकिन बहुत मुश्किल था हार ना मानना। एक बात जो दुश्मन हमारे जहन में डालता है, मैं इसे जरा और तफसील से बताऊंगी। जब आपकी जिंदगी में कोई मसला चल रहा हो तो आपको हर वक्त सुनाई देगा कि ये कभी खत्म नहीं होगा। और आप में से कुछ इस वक्त अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप बस ये हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगा, और तब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मजीद बर्दाश्त कर सकती हूँ, पता नहीं मैं कब तक इसे झेल पाऊंगी। हमें इन सब काली बातों को ये कहकर बदलना है कि मसीह जो मेरा कुव्वत बख्शने वाला है, कि वसीला, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने उन 7 हफ्तों के दौरान क्या किया, और मैं आपको बताती हूँ, बहुत से दिनों तक मैं बेहद तकलीफ महसूस करती रही, मतलब बहुत तकलीफ, और ज्यादा जितनी के आम तौर पर ना करती। और मैं यही कहती रही कि कल बेहतर होगा। खुदा की शिफा बख्श कुदरत मुझ में काम कर रही है। फिर मुझे एंटीबायोटिक्स के 2 राउंड्स लेने पड़े और उससे मेरा मेदा बिगड़ गया। फिर मुझे कुछ मेदे की दवा लेनी पड़ी। सो ये मजे की बात थी, लेकिन पता है अब मैं ठीक हूँ और फिनिक्स जाने के लिए तंदुरुस्त हूँ। अब मैं इस बात से दिली तौर पर खुश नहीं हूँ कि मेरा छुट्टी का वक्त ऐसा गुजरा, और मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास इसके लिए कोई दलील है, लेकिन देखें, मैंने जिंदगी में जाना कि कभी कभी खुदा मुझे चीजों से गुजरने देता है ताकि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ हो। कई बार हम मुश्किलात में से सिर्फ इस वजह से गुजरते हैं ताकि जब आप लोगों से ये कहें कि मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा है, तो वो वाकई आपका यकीन करें। कोई आपको ये कैसे कह सकता है कि वो जानता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर उनकी जिंदगी मजे में हो और उन्हें कभी मुश्किलात या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आमीन। ठीक है, तो बाहर आने को है। देखते हैं कि पौलुस ने फिलिप्पियों 4:11-12 में क्या कहा। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मुझे इसे सीखने में लंबा अरसा लगा कि किस तरह इस दर्जे तक खुश और मुतमईन रहूं कि बेचैन और बेकरार नहीं हूं। ये कमाल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी बदलाव नहीं चाहते, आप इस दर्जे तक मुतमईन हो सकते हैं जहां आप हर वक्त परेशानी में नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं फिलहाल किस हालत में हूं। मैं जानती हूं कि किस तरह खींचे तने हालात में जिल्लत के बावजूद फरोतनी से रहना है, और यह भी पता है कि अफराद का मजा कैसे उठाना और बहुतात में कैसे जीना है। मैंने सब तरह के हालात में रहने का भेद सीखा। देखें, आज हम भेद की बातें कर रहे हैं, हर तरह की हालत का सामना करने का भेद, चाहे शेर हो या भूखा, चाहे बहुतात और अफराद हो या तल्ब और जरूरत। गलतियों 6:9, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटेंगे। ऐन वक्त क्या है, मुकर्रर वक्त क्या है, यह बड़ा दिलचस्प वाला है। जी, ऐन वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर। आप जानते हैं, जब मैं मिनिस्ट्री में बिल्कुल नौ उम्र थी और इस इंतजार में थी कि मेरी मिनिस्ट्री मुख्तलिफ तौर पर बहाल होकर तरक्की करे, جانتے ہیں مختلف لوگ خداوند کی طرف سے مجھ سے کلام کرتے، ہر تھوڑی دیر میں چرچ میں خادم آتا اور ان کے پاس ہمیشہ میرے لیے کلام ہوتا کہ نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر یہ بے دل نہ ہو تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اور شروع میں چند مرتبہ میں بہت خوش ہوئی، اور پھر مجھے پتہ لگا کہ میں پہلے سے زیادہ کچھ اور نہیں جان پائی، کیونکہ عین وقت کب ہے جب خدا تیار ہو، اور جب خدا جانتا ہو کہ ہم تیار ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں، چاہے آپ کسی بھی بات کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، کبھی کبھی آپ تیار ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں، اور آپ کو ان کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ جب میں کچھ باتوں کے لیے انتظار کر رہی تھی کہ میری منسٹری میں ہو، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار خدا سے کہا، خداوند میں جانتی ہوں کہ میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، ہاں تو ہے، لیکن کچھ لوگ جن کے ساتھ کام کرنے کی تجھے ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ کو صرف کسی اور کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جب ہم انتظار کرتے ہو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کریں۔ کیا آپ کو اس لفظ سے محبت نہیں؟ میں نے اس دن جیف کو بتایا، میں نے کہا اوکے، میں نے طے کیا ہے کہ میں شاید کبھی بھی ایک مکمل صابر شخصیت نہیں بنوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کمزوری کو گلے لگانے اور اس کو جلال میں اپنے ساتھ لے کر جانے کا۔ اب میں خدا کا انتظار کرنے کے متعلق بہت کٹر نہیں بنتی، لیکن جب میرے پاس ایک مقصد ہے تو میں مقصد کی بہت پکی ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں اپنا ذہن بنا لیتی ہوں، جیسے کہ میں صبح اٹھوں گی، ورزش کروں گی، واک کروں گی، اور میں یہ کروں گی، اور میں کپڑے پہنوں گی، اور ایک دو نوالے کھاؤں گی، اور میں اس وقت آفس پہنچ جاؤں گی، اگر لوگ مجھے اپنی فضول باتوں سے تنگ کرنے لگے ہیں اور میری شوہر کو مجھے بھڑکانا بہت پسند ہے، سو وہ جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں، وہ کہیں گے آؤ اور میرے گلے لگو۔ اچھا، سچ کہوں، جب میں اس طرح کے موڈ میں ہوتی ہوں تو قطعی گلے لگنا نہیں چاہتی، مطلب بے حد سچائی سے بتا رہی ہوں کہ سوچتی ہوں کہ گلے لگنا تو میری صبح کی تربیت میں شامل ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، آپ اپنے شوہر کو منع نہیں کر سکتی کہ آپ کو گلے نہیں لگنا، سو میں جاتی ہوں اور گلے لگتی ہوں، اور وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ جب میں کچھ کر رہی ہوں تو میں پہلے سے ہی ذہنی طور پر اگلی بات سوچ رہی ہوتی ہوں، اور کبھی کبھی یہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں ٹریڈ مل سے اتری اور اسے چلتا ہوا چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ کام ختم ہوتے ہی مجھے اسے بند کرنے کی زحمت نہ ہوئی، مجھے آواز آتی رہی، ہاں وہ اب تک چل رہی تھی، اچھی بات ہے میں نے سن لیا، نہیں تو موٹر جل جاتی۔ دیکھیں، ہم سب کے پاس چیزیں ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ وائز 3۔ اب میں یہ سارا نہیں پڑھوں گی، لیکن مختصراً پڑھنا چاہوں گی۔ پہلی آیت سے 4 تک، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے، دھانے کا وقت ہے، تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ لیکن 11ویں آیت کہتی ہے، اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا۔ جانتے ہیں، موت بھی خوبصورت ہے اگر خداوند کے وقت پر آئے۔ آمین۔ اور پتہ ہے، میں نے خدا کو کہا ہے، میں اپنے اس بڑھاپے کے وقت میں بھلائی کرنا چاہتی ہوں، میں کوئی کھڑوس بڑھیا نہیں بننا چاہتی، آپ کو پتہ ہے، اور میں اچھی موت مرنا چاہتی ہوں۔ جب میں جاؤں تو میں چاہتی ہوں یہ اچھا ہو، میں بھلائی سے جانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، میرے خیال سے ہم جو بھی کرتے ہیں اسے ہم سب کو ممکنہ حد تک بہترین طور پر کرنا چاہیے۔ اور آپ میں سے کتنے بدلاؤ کو پسند نہیں کرتے؟ بہتر ہوگا اگر آج شام آپ اپنی سوچ بدل لیں، کیونکہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ چیزیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، ہمیشہ۔ میرے ڈینٹسٹ نے پچھلے ہفتے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا، اس نے مجھے بتایا تک نہیں، جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں ان کو نہیں بتایا، اس نے بس فیصلہ کر لیا کہ وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ اس نے انہیں بتایا، مطلب بالکل آخری دن، اور میں بس ایسی تھی۔ کیا جیف کہہ رہے تھے تمہیں نیا شخص پسند آئے گا، اور میں کہہ رہی تھی آپ کو کیسے پتا مجھے نیا پسند آئے گا، مجھے پرانا والا پسند ہے، اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب اس نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ پتا ہے، آپ آئینے میں دیکھتے اور سوچتے ہیں، मैंने उनको बाहर लाने की कोशिश की। फिर मैंने बहुत सारा लोशन लगाया और हर तरह की चीजें, और पता है आप बस बूढ़े होते जाते हैं, बस यही होता है। एक दिन आईने में अपने आप को देखते हुए गौर किया कि बहुत कुछ जो कभी यहां हुआ करता था अब यहां नीचे है। जी हाँ, आपके आसपास लोग बदल जाते हैं और आप कभी कभी ये बेहतर होता है, कभी कभी नहीं होता। मेरी चंद लोगों से दोस्ती थी, मतलब मैं एक रिश्ते के बारे में सोच रही हूँ। किसी के साथ 15 साल से अच्छी दोस्ती और अब वो शख्स मेरी जिंदगी में भी नहीं है, और ये बुरी बात नहीं, बस ये कि मेरी जिंदगी का एक मौसम खत्म हो गया। सो बात यह है कि अगर हम किसी चीज पर अड़े रहें जबकि खुदा उसे खत्म कर चुका हो। जी हाँ, मैं हर सेक्शन में कहूंगी, अगर हम किसी ऐसी चीज पर अड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे खुदा खत्म कर चुका है। तो किसी ऐसी बात पर अड़े रहने का कोई मतलब नहीं जिसे खुदा खत्म कर चुका है, और उस पर मजीद कोई मसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको आने वाली जबरदस्त चीज से बाज रखे हुए है, और शायद अगली बेहद कमाल चीज से जो खुदा ने आपके लिए रखी है। आज शाम मैं गहरे तौर पर महसूस कर रही हूं कि आपसे कहूं कि बाहर दरवाजे पर खड़ी है। जी हाँ, हार मत माने और बदलाव से ना कतराए, और किसी ऐसी बात पर अड़े ना रहे जिसका कुछ फायदा नहीं और आपके लिए बिल्कुल बेमायने है। खुदा पर किसी बेहतर चीज के लिए भरोसा करें। उसने हर एक चीज को अपने वक्त में खूब बनाया, मुझे ये बेहद पसंद है। जिंदगी का हर मौसम उसकी तकमील करता है और हमें उसे गले से लगाना चाहिए। जी, दर्द भरे मौसमों को भी। जितना हम उससे भागेंगे उतना ही तकलीफ देगा और वक्त भी उतना ही लेगा। आपको बस ये सोचना है। अच्छा, मैं इसे यूं कहूंगी, मैं एक इमरजेंसी टीम के मुतालिक एक शो देखती हूँ, मेडिकल टीम है, EMTS, जो हादसों की जगहों पर जाते और हादसे के शिकार अफराद की मदद करते हैं। उन पर गौर करते हुए मैं सोच रही थी कि सबसे पहली बात जो वो हर मुतासिरा शख्स को कहते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लो, रिलैक्स। औरत को पैदाइश के वक्त क्या कहा जाता है? सांस लो, रिलैक्स। पता है क्यों? क्योंकि आप जिस कदर भी जज्बाती तकलीफ से लड़ते हैं, जिस्मानी तकलीफ से या किसी भी तकलीफ से, उतना ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। और जानते हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं, हाँ यकीनन पता है मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो इब्लीस है, और यकीनन आप मुझसे उसको गले लगाने की तवक्को तो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस चीज से मोहब्बत करनी है, लेकिन हमें इस भेद को जानने की जरूरत है कि खुदा का हर उस चीज के लिए मकसद है जिसे वो हमारी जिंदगी में आने देता है, और हम उसे कभी समझ ना पाए तो भी हम खुदा पर भरोसा कर सकते हैं कि उसका कलाम हक है। और वो हमेशा, यहाँ एक और भेद आ जाता है, हमेशा हर चीज खुदा से मोहब्बत रखने वालों और उसकी मर्जी चाहने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, हमेशा 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 हमेशा। मेरे खुदा, मैं मुड़कर अपने बचपन को देखती हूँ और वो सब जिससे मैं गुजरी और वो तमाम मसाइल जो मेरी जिंदगी में आए, और बहुत सालों तक मैं कहती रही कि काश ये सब ना होता। मुझे इससे नफरत थी और उन लोगों से भी जिन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया, और इससे सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। और रास्ते में कहीं मैं ऐसे मोड़ पर आ गई जहां मैंने सोचा, और आपको पता है शायद शायद ये अहमकाना लगे पता नहीं, लेकिन मैं अब दरहकीकत ये नहीं कह सकती, मुझे अफसोस है ये सब हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो मैं आज हूं उसकी वजह वही है, दरहकीकत। जी हाँ, आप में से कितने ऐसे हैं कि आपके मसाइल थे जिन्होंने आपका ताल्लुक यीशु से जोड़ दिया? जी, तो फिर आपको इन मसाइल के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे थे आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। आमीन। हमें हर तरह के मामलों में खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है, और उसे हमें उस मकाम पर ले जाने दिया जाए जहाँ हमारे पास एक बड़ी गवाही हो जो दूसरों की मुश्किलात में उनका हौसला बन सके। आप जानते हैं आपका रवैया आपके हालात के साथ नहीं बदलना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का हर मौसम खुदा पर और उसके वादों पर निगाहें लगाने से पुरलुत्फ बना सकते हैं।